नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित आवाजाही के लिए खोलने के बाद अमरीका और ईरान दो हफ्तों के लिए युद्ध विराम पर सहमत। युद्ध विराम की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट। रूस और चीन ने होर्मुज के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के साथ बातचीत करेंगे और ISSF विश्व कप में निशानेबाज पलक और मुकेश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बनाया है विश्व रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। अमरीका और ईरान दो सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, जिससे कई हफ्तों से चल रहे प्रत्यक्ष सैन्य टकराव का अंत हो गया है। मध्यस्थों के माध्यम से हुए इस समझौते में दोनों पक्षों द्वारा तत्काल हमले रोकने और होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए फिर से खोलने का आह्वान किया गया है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों को द्विपक्षीय युद्ध विराम पर सहमत होना चाहिए। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है और संघर्ष सुलझने के करीब है। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर ईरान पर हमले बंद कर दिए जाते हैं तो वे युद्ध विराम के लिए सहमत हैं। उन्होंने बताया कि दो सप्ताह की अवधि के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन संभव होगा। इस बीच ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा अमेरिका ने ईरान की 10 सूत्रीय योजना को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कल रात राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते को पूरा न करने पर ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी दी थी। उन्होंने इसके लिए आज सुबह 5:30 बजे तक का समय निर्धारित किया था। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
अमरीका और ईरान के बीच दो हफ्ते के युद्ध विराम के ऐलान के बाद आज एशियाई शेयर बाजारों में जबरदस्त उछाल आया। तनाव कम होने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। इस तेजी में जापान का निक्केई सबसे आगे रहा, जिसमें 5.28% की बढ़त हुई, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.61% ऊपर चढ़ा। भारत का निफ्टी भी 3% से ज्यादा चढ़कर 23,841 के स्तर पर पहुंच गया। दूसरे क्षेत्रीय सूचकांक हैंगसेंग में 3.04% और ताइवान वेटेड में 3.72% की बढ़त देखी गई। सीज फायर की वजह से ऊर्जा क्षेत्र में भी भारी बिकवाली हुई। ब्रेंट क्रूड 13.04% गिरकर $95.02 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि क्रूड ऑयल 13.76% गिरकर $97.41 पर पहुंच गया। दूसरी तरफ सोने में 100 अंकों की तेजी दर्ज की गई। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ईरान पर दो सप्ताह के लिए हमले रोकने के अमरीका के फैसले का समर्थन करता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि ये रोक लेबनान पर लागू नहीं होती है, जहां हिजबुल्ला के साथ लड़ाई जारी है। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसराइल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन प्रयासों का स्वागत करता है जिनसे ये सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान अब अमरीका, इसराइल, ईरान के पड़ोसी अरब देशों और व्यापक विश्व के लिए परमाणु, मिसाइल और आतंकी खतरा न रहे। रूस और चीन ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को वीटो कर दिया है। होर्मुज जलडमरू मध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिससे होकर वैश्विक तेल का 1/5 हिस्सा गुजरता है। 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहरीन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर मतदान किया। इसके पक्ष में 11 वोट पड़े, जबकि रूस और चीन ने इसके विरोध में अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और कोलंबिया इस मतदान से दूर रहे। वीटो शक्ति रखने वाले स्थायी सदस्य रूस और चीन द्वारा प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने की वजह से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इसराइल के वाणिज्य दूतावास भवन के बाहर पुलिस और हमलावरों के बीच हुई गोलीबारी में 2 हमलावर मारे गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना में 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। ये गोलीबारी इस्तांबुल के वित्तीय जिले में स्थित इसराइल के वाणिज्य दूतावास के निकट एक टावर के बाहर हुई। वर्ष 2023 में हमास इसराइल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद इसराइल के वाणिज्य दूतावास के निकट के इलाके में भारी हथियारों से लैस पुलिस की तैनाती रही है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज दोपहर नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। श्री रहमान की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की उम्मीद है। फरवरी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से ये किसी बांग्लादेशी राजनेता की पहली भारत यात्रा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री अमरीका की 3 दिन की यात्रा पर आज वॉशिंगटन DC पहुंचेंगे। इस दौरान वो अमरीका के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इनमें व्यापार, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा आपसी हित के मुद्दे शामिल हैं। विदेश सचिव क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तो लाम को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए देश के राष्ट्रपति के रूप में संसद द्वारा एकमत से चुना गया है। संसद ने कहा कि राष्ट्रीय असेंबली सत्र में उपस्थित सभी 495 प्रतिनिधियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के नामांकन को अपना समर्थन दिया, जबकि 5 प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA के आर्टेमिस द्वितीय मिशन ने पृथ्वी से मानव द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सुनिए ये रिपोर्ट।
4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा रहे ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर भाग के पास से गुजरते हुए पृथ्वी से लगभग 2,52,752 मील की दूरी तक पहुंचा। आर्टेमिस द्वितीय मिशन ने 1970 में अपोलो 13 द्वारा बनाए गए 2,48,655 मील के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आर्टेमिस द्वितीय मिशन ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। यह पहली बार था जब चंद्रमा के करीब यात्रा कर रहे लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे किसी अंतरिक्ष यान में मौजूद लोगों से सीधी बातचीत की। इस दौरान आर्टेमिस द्वितीय पर मौजूद क्रिस्टीना ने अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद जेसिका मेयर से बात की। इन दोनों ने इससे पहले 2019 में पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किए गए पहले स्पेस वॉक में भी साथ काम किया था। इससे पहले आर्टेमिस द्वितीय ने पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तय करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से योजना मिश्रा।
स्पेन में आयोजित ISSF विश्व कप में कल भारतीय निशानेबाज बालक गुलिया और मुकेश नीलावल्ली ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में दोनों ने कुल 487.7 अंक हासिल किए। विश्व कप में नीलावल्ली का ये पहला पदक रहा। इससे पहले उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया और दूसरे स्थान पर रहकर पदक के लिए क्वालिफाई किया। प्रतियोगिता में चीन ने रजत पदक जबकि हंगरी ने कांस्य पदक हासिल किया। सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कल किर्गिस्तान में ललित ने भारत का पहला पदक जीता। उन्होंने 55 किलोग्राम वर्ग में ग्रीको रोमन कैटेगरी में रजत पदक हासिल किया। एक और भारतीय पहलवान नितेश 97 किलोग्राम वर्ग में ग्रीको रोमन कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में नितेश ने चीन के जेगोंग वांग को हराकर मौजूदा चैंपियन ईरान के मोहम्मद सरवी के खिलाफ स्वर्ण पदक के मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित आवाजाही के लिए खोलने के बाद अमरीका और ईरान 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम पर सहमत। युद्ध विराम की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट। रूस और चीन ने होर्मुज के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर किया वीटो। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के साथ बातचीत करेंगे। और ISSF विश्व कप में निशानेबाज पलक और मुकेश ने स्वर्ण पदक जीतकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।